पिछले अध्याय में आपने देखा कि रुद्र मॉडल को हटाने का आदेश देता है और मयंक दिशा को रिजाइन लेटर पर साइन करने के लिए बुलाता है। दिशा होटल रंगमहल जाती है जहां उसे एक सजावट मिलती है और मयंक के इंतजार में आती है। रूही लाइब्रेरी में एक दुर्घटना से बच जाती है। अब आगे रूही को जैसे मदद मिलती है लेकिन वो उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे थप्पड़ मारती है। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होता है। दूसरी ओर देवांश दिशा को प्रपोज करता है लेकिन दिशा चौंकाने वाली प्रतिक्रिया देती है। अब आगे रूही को जैसे मदद मिलती है लेकिन वो उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे थप्पड़ मारती है। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होता है। दूसरी ओर देवांश दिशा को प्रपोज करता है लेकिन दिशा चौंकाने वाली प्रतिक्रिया देती है।
नाउ नेक्स्ट चैप्टर 149। अब आगे रुद्र का कैबिन। रुद्र अपने कैबिन में आता है और तुरंत बाथरूम में चला जाता है क्योंकि उस लड़की के छूने के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि किसी गंदी नाली के कीड़े ने उसे छू लिया हो। इसलिए वे बस इस गंदगी को जल्द की जल्द अपने शरीर से मिटाना चाहता था। इसलिए वे बाथरूम में जाता है और अपने कोट और शर्ट को तुरंत उतार कूड़ेदान में डाल देता है, जैसे कि उस लड़की के छूने की वजह से वे गंदी हो गई हो। रुद्र तुरंत शावर ऑन करता है और उसके नीचे खड़ा हो जाता है, जिसके शावर का ठंडा ठंडा पानी रुद्र के ऊपर गिरने लगता है। वहीं रुद्र शावर के नीचे खड़ा होने के बाद अपना शावर जेल उठाता है और अपने शरीर पर उस शावर जेल को लगा जहां उस लड़की ने उसे छुआ था, उस जगह को साफ करने लगता है, क्योंकि वे नहीं चाहता था कि उस लड़की की थोड़ी सी भी छुअन उसके शरीर पर मौजूद हो। कुछ देर यूं ही साफ करने के बाद और शावर लेने के बाद भी उसे ऐसा ही लग रहा था कि उसके शरीर पर अब भी उस लड़की की छुअन है, जिसे महसूस कर उसे काफी गुस्सा आता है। पर उसे ये भी मालूम था कि इस छुअन को वे अपने शरीर से पूरी तरह से कैसे मिटा सकता है। इसलिए वे शावर का पानी बंद करता है और तुरंत बाथरूम पहन बाथरूम से निकल रूम में आता है और अपने कपड़े निकाल उसे पहन रेडी हो जाता है। फिर अपने कैबिन में आ अमन को कॉल कर तुरंत बुलाता है, जिसे सुन अमन भी भागता हुआ रुद्र के कैबिन में आ जाता है। वहीं रुद्र अमन को देखते हुए बोला, अमन पता करो मेरी रूह इस समय कहाँ है। रुद्र की बात सुनकर अमन अपना सर हाँ में हिलाता है और एक बॉडीगार्ड को कॉल कर रूही के बारे में पूछता है, जिसे सुन वे बॉडीगार्ड अमन को बता देता है कि रूही कहाँ है। जिसे सुन अमन कॉल रख रुद्र की तरफ देखते हुए बोला, सर रूही मैडम अभी कॉलेज के कैंटीन में है। अमन की बात सुनकर रुद्र बोला, ठीक है उसे जल्द की जल्द ऑफिस आने को बोलो। रुद्र की बात सुनकर अमन हाँ में सर हिलाते हुए बोला, ठीक है सर मैं अभी एक बॉडीगार्ड से रूही मैडम को ऑफिस लाने के लिए बोलता हूँ। इतना बोल वे वहां से चला जाता है और एक बॉडीगार्ड से रूही को ऑफिस जल्द के जल्द लाने को बोल देता है। वहीं दूसरी तरफ होटल रंगमहल। देवांश जैसे ही दोबारा दिशा की तरफ बढ़ उसका हाथ पकड़ने वाला होता है, वैसे ही दिशा दोबारा दो कदम पीछे हो देवांश को अपना हाथ दिखा रोकते हुए कहती है, सर मुझे मालूम है कि आप बहुत अमीर हैं और आप जिस लड़की से भी शादी करना चाहें वे लड़की भी आपसे खुशी खुशी शादी करने के लिए मान जाएगी, पर सर मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैंने आपको कभी भी उस नज़र से नहीं देखा और मुझे भी उम्मीद थी कि आप भी मुझे कभी उस नज़र से नहीं देखते होंगे, लेकिन मैं ये जानकर काफ़ी हैरान हूँ सर कि आप मुझे तब से अलग नज़र से देखते हैं जब से मैंने उस ऑफिस में कदम रखा। लेकिन अब बस सर, उस रात को भी आपने नशे की हालत में मुझसे यही बात बोली थी और मुझसे बदतमीजी की थी, लेकिन उस समय मुझे लगा कि आप नशे की हालत में ऐसा बोलिया कर रहे हैं, इसलिए मैं चुपचाप बिना किसी शिकायत से उस ऑफिस से रिजाइन कर रही थी, क्योंकि मैं अब उस ऑफिस में बिल्कुल काम नहीं कर सकती थी जिस ऑफिस का बॉस मुझे एक एम्प्लॉय की नज़र से नहीं बल्कि किसी और ही नज़र से देखे। लेकिन सर आज आपकी बातें सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि उस रात की कही हुई सारी बातें बिल्कुल सच थीं, कि आप जानबूझकर मुझे परेशान करके थे, मेरे करीब आने की कोशिश करते थे, जिसे मैं सिर्फ अपनी गलतफहमी समझकर नज़रअंदाज कर देती थी कि आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे यकीन था आप पर कि जो इंसान अपने करीब आने वाली लड़कियों को इतनी बड़ी सज़ा देता हो और किसी लड़की की तरफ अपनी नज़रें उठाकर भी ना देखता हो, वे भला मुझे उस नज़र से क्यों ही देखेगा। इसलिए मैं हर बार उस बात को नज़रअंदाज कर देती थी, लेकिन आपकी फीलिंग जानने के बाद मुझे यकीन हो गया कि वो सारी चीज़ें जिसे मैं आपकी गलती समझकर नज़रअंदाज कर देती थी, वे चीज़ आपकी गलती नहीं होती थी, बल्कि आप जानबूझकर मेरे साथ ऐसा करते थे। आप जानबूझकर मेरी छोटी सी गलती पर भी मुझे अपने कैबिन में घंटों खड़ा रखते थे ताकि आप मुझे अपने करीब रख सके। आप हर वे कोशिश करते थे जिसके आप मेरे करीब रह सके। इतना बोल वे चुप हो जाती है, लेकिन उसके दिमाग में अब देवांश की एक एक हरकतें घूमने लगती हैं कि किस तरह देवांश उसे फाइल के बहाने अपने घर बुलाता था, फिर घंटों उसे अपने कमरे में बैठा कुछ न कुछ कामों में उसे उलझा देता था और कैसे हर बार बिजनेस मीटिंग में उसे ही अपने साथ लेकर जाता था। तभी दिशा के माइंड में एक बात क्लिक करती है कि जब वे इंदौर गई थी तो उसे देवांश के साथ एक ही रूम में रहना पड़ा था। कहीं ये देवांश का ही तो प्लान नहीं था, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि देवांश सिंघानिया को एक होटल में रूम ना मिले। इस बात को याद करते ही दिशा देवांश को शक भरी नजरों से देखते हुए बोली, सर जब हम इंदौर गए थे तो उस होटल में मेरे साथ एक ही रूम में रहना, कहीं ये सब आपका ही तो प्लान नहीं था। इतना बोल वे देवांश को एकटक देखने लगती है
मगर दिशा की बात सुनकर भी देवांश कोई रिएक्ट नहीं करता, बस ध्यान से दिशा की सारी बातों को सुन रहा था। वहीं देवांश को कुछ भी ना बोलता हुआ देख दिशा को अब यकीन हो जाता है कि वे जैसा सोच रही थी वे बिल्कुल ठीक है। देवांश ने वे चीज जनबूझ कर की थी। इस बात को समझ जैसे दिशा को एक और बहुत बड़ा झटका लगता है। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में रोही लाइब्रेरी के आने के बाद परी और अर्जुन के पास आकर कैंटीन में बैठ जाती है और अपने सामने रखे बर्गर को उदास मन से खाने लगती है। वहीं परी और अर्जुन जो पिज्जा खा रहे थे, रोही को यूं उदास देखकर अर्जुन रोही से बोला, रोही क्या हुआ, तू उदास क्यों है, किसी ने कुछ कहा क्या? रोही की बात सुनकर अर्जुन बर्गर खाते खाते ही अर्जुन और परी को सारी बातें बता देती है कि कैसे लाइब्रेरी में जय ने उसकी मदद की और गलत फहमी की वजह से उसने किस तरह जय को थप्पड़ मार दिया। रोही की बात सुनकर परी और अर्जुन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रूही ने जय को थप्पड़ मार दिया। वहीं रूही परी को अर्जुन के खुले हुए मुंह को देखकर गुस्से में बोली,
तुम दोनों अपने मुंह बंद करो, वरना सच में तुम दोनों के मुंह में मक्खी घुस जाएगी। और मुझे कुछ आइडिया बताओ कि मैं उसे कैसे सॉरी बोलूं।